नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम अष्टम स्कंद अध्याय 16 श्लोक संख्या 5। अपि वा कुशलं किंचित् गृहेषु गृहमेदिनि धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगयोगिनां गृहे गृहमेदिनि कामति का यत्र फल। जो अनुवाद तार पर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद महाराज की धर्म अर्थ तथा काम का समुचित पालन करता है तो उसके कार्यकलाप एक आध्यात्मिक योगी के ही समान इस श्लोक संबोधित किया है, जिसका अर्थ होता है कि इंद्र तृप्ति के लिए जो कृष्ण जीवन से संतुष्ट है सामान्यतः के गए इंद्र गर्भित है धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। मनुष्य का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करने का होना चाहिए, किंतु इंद्रिय तृप्ति को एकत्र आदेश दिए गए हैं कि किस प्रकार धर्म अर्थ तथा काम के उनका पालन किया जाए। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तंतोगत पाना चाहिए। जो लोग गृहस्थ हैं उन्हें नहीं सोचना चाहिए ज्ञान योगी जीवन अत्य आकर्षक उन्हें सही ढंग से पालन हो रहा है। समझाया गया है, ये प्रसंग ही बहुत अच्छा चल रहा है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञान श्लाघया च चूर्णतम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण माधवश्च हे श्री पादर शिव सदि गौर। तो आप क्या इसको समझें रहस्य को और फिर उन चीजों से बचें जो हमारे निर्भर प्रसंग कि देखिए कश्यप मुनि की एक पत्नी जिसका नाम क्या दिति से कौन है दैत्य तो अदिति तो दिति से जो उत्पन्न हुए पुत्र वो दैत्य कहलाए और अदिति से जो पुत्र उत्पन्न हुए पत्नी अलग अलग हैं। तो किस तरह से बलि महाराज क्योंकि सारे दैत्यों के लीडर थे दैत्यों क्या हो गए थे पराजित, लेकिन विचार जो हैं उनके बाद उनको एक बहुत ही आध्यात्मिक शक्ति मिल गई और जो भृगु मुनि के जो वंशज थे ब्राह्मण लोग उनसे यज्ञ कीजिए विश्व विजयी कला धनुष ब्रह्मा जी ने भी द्वितीय के पुत्रों के ऊपर क्या कर दिया तो साथ क्योंकि दो किसके पास मुसीबत पड़े तो भाग करके गुरु थे तो उन्होंने समय परिस्थिति को भाप लिया और समय बहुत शक्तिमान हो गए और यह कि आप जाकर कहीं छिप जाओ युद्ध मत करो अदृश्य हो जाओ और देवता वैसे भी अदृश्य होने मास्टर अदृश्य हो जाते हैं। जैसे जब रावण का अत्याचार बढ़ा था तो एक प्रसंग सुना था जब रावण का अत्याचार खूब चल रहा था देवताओं पर तो जब रावण को पता चला कि कुछ खास खास देवता जो हैं मिल करके कुछ मीटिंग कर रहे हैं तो रावण को जब पता चला तो मीटिंग स्थान पे वो पहुंच गया और देवताओं के जो खबरी लाल थे खबरचित थे बता दिया कि रावण आ रहा है इधर यार। तो उसमें जितने भी चंद्रमा थे इंद्र थे खास खास देवता थे उन्होंने तुरंत अदृश्य हो गए वहाँ पे जानते क्या किया उन्होंने अपना भेष बदल लिया कोई मोर बन गया यमराज भी थे मीटिंग में कौआ बन गया कुबेर जी थे, गिरगिट बन गए, सब ऐसे कुछ ना कुछ बन गए, कोई मुर्गा बन गया, कोई मोर बन गया। तो जब रावण वहाँ पहुँचा तो कहे कि लगता है मुझे जिसने खबर दी है वो गलत था, क्योंकि यहाँ तो कोई देवता है नहीं, यहाँ तो पक्षी गिरगिट ही सब है ना। तो वापस चला गया, जब वापस चला गया तब देवता अपने असली रूप में आए। कहने का मतलब कि देवताओं कितने भी बलवान हो लेकिन जब आशीर्वाद का बल प्राप्त हो जाता है दैत्यों को तो बड़े प्रबल हो जाते हैं, तो देवता भी क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। तो शंकर जी के ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करके रावण भी इसी तरह से प्रबल हो गया था, उसकी वजह से सारे देवता और जमीन पर रहने वाले मनुष्य साधु संत सब क्या थे, परेशान थे। और जब भी देवता परेशान हुए हैं तो उसका समाधान किसने निकाला है, परम भगवान श्री कृष्ण ने निकाला। तो बुद्धिमान इसी में है कि जो परम भगवान है हम सबको उन्हीं के साथ क्या करना चाहिए, जुड़ना चाहिए, राइट। जब हमको ये पता चल गया है या पता है, गीता में भगवान कहते हैं तो उन देवताओं के पीछे हम क्यों पड़े ना, जो खुद अपनी मुसीबत का समाधान नहीं कर सकता तो उसकी हम माला क्यों जपे, राइट। यही शास्त्र कहता है, भगवान गीता में बताते हैं कि देवताओं की पूजा करने वाले देव लोग को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूत लोग को जाते हैं, पितरों की पूजा करने पितर लोग को जाते हैं, लेकिन जब मेरे भक्त होते हैं तो मेरे धाम को आते हैं। तो हमें खुश होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, किसके नाम की माला जप करना चाहिए, किसकी भक्ति करनी चाहिए, है ना। एकमात्र भगवान कृष्ण की करना चाहिए, श्री भगवान कहते हैं गीता में कि सर्वधर्मान प्रतिज्ञ मामेकं शरणं व्रज, सब धर्मों को छोड़ करके एकमात्र किसकी शरण में आए, मेरी शरण में, कृष्ण की शरण में आना चाहिए। तो इस प्रसंग में भी एक बार बृहस्पति के पास गए, बृहस्पति ने आते समझाया कि आप लोग अदृश्य हो जाइए, और सब अदृश्य हो गए, और किसका राज हो गया, बलि महाराज का। तो जब बलि महाराज प्रशासन पे आ गए, राजा बन गए, और इंद्र वगैरह अदृश्य हो गए, पता नहीं कहाँ छिप गए, तो किसको कष्ट हुआ, अदिति को, है जिसका बेटे गायब हो जाए तकलीफ तो होगी, और उनकी जो दूसरी बहन थी, दूसरी है, उसके बेटे जो है छा गए, कब्जा कर लिया, तो दीति तो खुश थी, अब अदिति क्या नाराज होती, और जब अदिति खुश होती थी तो दीति परेशान हो जाती थी, बड़ा समस्या था ये है। तो ये चलता रहता है, कोई कब खुशी, कभी कोई खुशी, कोई कब दुखी, कोई ये संसार का सूरज चला रहा है, हर युग में ये स्थिति चली आ रही है। आप देखेंगे कि शक्तियुग में हमेशा युद्ध चलता रहा है, त्रेता युग में भी युद्ध चलता रहा, चलता रहे नहीं चलता, द्वापर युग में भी कंस के साथ अच्छी लड़ाई है, महाभारत जैसा विशाल युद्ध हुआ, सोचने वाली बात है, हर युग में इतना भयानक भयानक युद्ध हुआ, और जब हुआ देवताओं में और दानों में हुआ। कलयुग कितना अच्छा है, कोई नहीं लड़ रहा है, देवता भी आनंद में, और मनुष्य भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, कीर्तन भजन कर रहे हैं। लेकिन सतयुग में त्रेता त्रेता युग द्वापर में ऐसा नहीं था, सब परेशान थे। लेकिन इस समय कलयुग इसलिए अच्छा है कि ऐसी परेशानी हमारे सामने नहीं है, इसीलिए हमें खूब कीर्तन भजन करना चाहिए, भगवद गीता का क्या करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। तो कश्यप मुनि मुनि जो है एक तपस्या ध्यानस्थ हो गए थे कुछ दिन के लिए घर से बाहर जाकर, जब ध्यान तोड़ करके घर वापस आए तो देखा तो घर में वो वातावरण नहीं पाया जो छोड़ के गए थे। पूरा वातावरण क्या हो गया था, चेंज हो गया था। तो वही अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं कि हे गृहस्थ जीवन में लगी हुई मेरी पत्नी, अनुरक्त मतलब लगी हुई, तो उनको सरल भाषा होता है। यदि कोई गृहस्थ जीवन में धर्म अर्थ तथा काम का समुचित पालन करता है तो उसके कार्यकलाप एक आध्यात्मिक के ही समान शेष होते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आ गई है। प्रभुपाद जी इसी चीज को देखो अपने तात्पर्य कितने सुंदर ढंग से समझाया है कि ज्यादातर तो लोग गृहस्थ आश्रम सोचते हैं कि एक इंद्र तृप्ति का क्या है, लाइसेंस। अब हम खूब मौजा मौजा करेंगे गृहस्थ आश्रम रख करके, ऐसा नहीं। गृहमेधि शब्द यहाँ इस्तेमाल किया है। गृहमेधि उसे कहा जाता है जिसका लक्ष्य सिर्फ क्या होता है, इंद्रिय तृप्ति। भगवान कृष्ण जिसके लक्ष्य नहीं होते, ये जान लीजिए। चूंकि यहाँ ज्यादातर लोग गृहस्थ आश्रम में जो हैं, और कृष्ण ऐसे हैं जो चारों आश्रम के लक्ष्य हैं, जान लीजिए। ब्रह्मचारी के भी लक्ष्य किसका होना चाहिए, कृष्ण का। अगर आप गृहस्थ आश्रम हैं तो आपके भी लक्ष्य कौन है, कृष्ण है। आप ब्रह्मचारी गृहस्थ बानप्रस्थ संन्यास, अगर आप इंसान हैं, क्यों इंसानी तो ब्रह्मचारी बनता है, इंसानी गृहस्थ बनता है, इंसानी बानप्रस्थ बनता है, इंसानी क्या बनता है। तो अगर आप इंसान हैं अर्थात मनुष्य हैं तो आपका लक्ष्य कौन होना चाहिए, राधा और कृष्ण होना चाहिए। उसे कहते हैं गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ भक्त। अगर आपके लक्ष्य कृष्ण नहीं है, राधा रानी नहीं है, तो आप क्या है, अच्छे खासे गृहमेधि हैं, राइट। क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है, इंद्रिय तृप्ति है। तो बहुत सतर्क होना चाहिए। आज के लोगों को पता है कि शादी मतलब मौजा है, मौजा मस्ती मस्ती है नहीं। उनको पता नहीं है कि जिस दिन शादी होती है उसी दिन मस्ती रहती है, और उसके बाद धीरे 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 ये जो खुश मुस्कुराना होता है, हंसना होता है, धीरे धीरे बंद होने लगता है। क्योंकि असली असलियत नजर आने लगती है ना, कि गृहस्थ आश्रम इतना आसान नहीं है। शादी करना बहुत आसान है, लेकिन जिंदगी भर उसका भरण पोषण करना क्या है, कठिन है। आसान नहीं, निभाना आसान नहीं होता, ये जान लीजिए। जो गृहस्थ बन गए हैं उनको पक्का अनुभव है, जो नहीं बन रहे हैं उस सोचते कि वो बड़ा मौजा है, बड़ा मौजा है, कोई मौज मस्ती नहीं है। जो हो गए हैं उनसे आप पता करें तो पता चले, वही आनंद में है जो गृहस्थ में रह करके। और लक्ष्य किसको बना रखा है, कृष्ण को बना रखा है, गृहस्थ भक्त यही चाहते हैं। यही तो कश्यप ने अपने कहते कि क्या समस्या है जो कि आप इतनी उदास हैं, अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं, क्योंकि पत्नी बड़ी उदास थी। तो प्रभुपाद जी बड़े सुंदर कहने की हमें गृहमेधि नहीं बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, गृहस्थ भक्त बनना चाहिए। बहुत आवश्यक है हमारे जीवन का लक्ष्य कौन होना चाहिए, कृष्ण होना चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि मन मना मद भक्तो मध्याजिमा नमस्कार, अपना मन मेरे में लगाओ, मेरी भक्ति करो, और मुझे क्या करो, प्रणाम करो। ऐसा वही कर सकता है जो गृहस्थ आश्रम जो शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को जीता है वो गृहस्थ भक्त कहलाता है, और जो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन नहीं जीता, जिसके लक्ष्य कृष्ण नहीं है, वो क्या कहलाता है, गृहमेधि कहलाता है। उसका लक्ष्य खाना पीना सोना संतान उत्पन्न करना, बस। ये तो पशु भी करता है, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, ये हमको क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं कि जो लोग गृहस्थ हैं उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि धर्म गृहस्थ की नित्य की प्रक्रिया को सुधारने के लिए निमित्त है, ऐसा नहीं है। आप भगवत धाम जा सकते हैं गृहस्थ आश्रम रह करके भी, तब जब गृहस्थ आश्रम के जो नियम शास्त्र बताएंगे हैं उसका पालन करेंगे। वास्तव प्रभुपाद जी जो इस्कॉन की स्थापना की, तो चारों आश्रम जो है हमारे यहाँ है, लेकिन चारों आश्रम में रह करके आपका लक्ष्य क्या है, कृष्ण की सेवा करना, यही लक्ष्य, यही लक्ष्य आपका होना चाहिए। आप खुद सोचिए कि इस संसार में आप आते हैं, जाते हैं किसके लिए आते हैं, हर जीव इस संसार में आता है सिर्फ भोगने के लिए, आप समझे ना, आपको बहुत वैदिक नॉलेज में बता रहा हूं, सिर्फ किसके लिए आता है, भोगने के लिए, हर जीव यहां भोगने के लिए आता है। अब भोगने के लिए सब जरूरी चीज क्या है, कौन बताए, आप लोग पंडित तो हो, शरीर भोगने के आते हैं कि बिना शरीर के आप भोग नहीं सकते। इसलिए जब भी आप इस संसार में जीव आता है तो जीवात्मा अपने साथ क्या लेके आता है, शरीर लेके आता है, क्योंकि अगर संसार में भोगना है तो शरीर के माध्यम से क्या करेंगे, भोगेंगे। जब ये शरीर भोगने के लायक नहीं रह जाते तो हम इस शरीर को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। हम कितने निष्ठुर हैं, कितने सेल्फिश हैं, यूज एंड थ्रो फिलॉसफी हम ही करते हैं, राइट, कि हम ये शरीर को लाए, और जब ये शरीर भोगने के लायक नहीं रह गए, राइट, तो हम क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, ये तो करते हैं, और दूसरे नए प्रवेश में प्रवेश कर जाते हैं ताकि इंजॉय करें। यही चीज भगवान गीता समझाए, भगवान गीता क्या कहते हैं कि अर्जुन जिस तरह से मनुष्य फटे पुराने वस्त्र को छोड़ करके नया वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार से आत्मा जीर्ण शीर्ण वृद्ध शरीर को छोड़ करके नूतन शरीर धारण कर लेता है। यही चीज भगवान समझाए, कोई यही चीज समझाए। तो हम आते हैं इस संसार में भोगने के लिए, और भोगने के लिए हम शरीर लेके आते हैं, और जब ये शरीर भोगने के लायक नहीं रह जाती तो हम छोड़कर क्या होते हैं, चले जाते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, रोने लगते हैं, रोते उसके लिए है जिसको कभी देखा ही नहीं, जिसको देखा, जिससे प्यार किया, जिस शरीर को गले लगाया और सामने पड़ जाती है, फिर रोते हैं चले गए, जिसको देखा ही नहीं उसके लिए रोते हैं, और जो दिखाई दिया हमेशा शुरू से लेकर के अंत तक, राइट, वो सामने पड़ा हुआ है, और फिर रोते हैं चला गया। तो कौन जाता है, कौन आता है, यही तो भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि मूर्ख लोग गीता को पढ़ते ही नहीं, गीता का ज्ञान इसी के लिए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि सब घर में जाएं, घुस घुस करके गीता पकड़ाएं, हर घर में हर हाथ में क्या होनी चाहिए, गीता होनी चाहिए। जिस तरह से लोग अखबार पढ़ते हैं, बिना अखबार के रह नहीं सकते, आप लोग ऐसा पकड़ पकड़ के समझाओ कि बिना गीता के पढ़े नर। ये प्रभुपाद अगर वास्तव में इंसान का कल्याण करना चाहते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे इस कान के भक्तों की, वो घर घर जा करके हर घर में गीता क्या करें, पहुंचाएं। एक प्रभुपाद चाहते थे, क्योंकि जब वो गीता पढ़ेगा तो उसको कौन समझाएंगे, भगवान समझाएंगे कि इस श्लोक तो उन्होंने बोला है, और जब तात्पर्य पड़ेगा तो प्रभुपाद जी समझाएंगे। तो तात्पर्य किसने लिखा है? प्रभुपाद जी। तो भगवान और प्रभुपाद दोनों मिलकर के समझा ही देंगे। भाई हम लोग समझे तभी तो ज्वाइन किए, किताब पढ़ करके तो ज्वाइन किए, राइट। यही प्रभुपाद जी जो बुक्स मैराथन पूर्व वर्ल्ड में इचला इसी के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए। एक ज्ञान देना बहुत जरूरी है कि भाई इस संसार में जिन्होंने मुझे ये शरीर दिया, अब इस शरीर कौन देता है, कौन बनाता है? कृष्ण बनाता है। तो इस शरीर पर अधिकार वास्तव में किसका है? कृष्ण का है। तो इस शरीर को भी किसकी सेवा में लगाना चाहिए? कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, कि शरीर उनकी दी हुई है। एक बड़े महान भक्त अपने हिंदुस्तान के लिए, उन्होंने ये बात कही कि जन जिनु तनु दियो ताहि बिसराय, जिन तनु दियो, जिन्होंने ये शरीर दिया हमने उसी को फुला दिया। जिन तनु दियो ताहि बिसराय ऐशो नमक खरामी, हम कितने नमक खरामी हैं। नमक खराम के मतलब समझते हैं ना, हम कितने नमक खराम हैं कि जिसने मुझे शरीर दिया हमने उसी को बुला दिया, उसकी हमने सेवा नहीं की, उसका नाम नहीं लिया, हम ऐसे नमक हरामी हैं। तो हर इंसान नमक हरामी है, जिसका दिया हुआ खा रहा है उसका नाम नहीं ले रहा है, नाम ले रहा है जो जानते हैं वो नाम ले रहे हैं। अब प्रभु जी आप देखिए, जीवन जीने के लिए गीता क्यों महत्वपूर्ण है? गीता में हर श्लोक महत्वपूर्ण है। एक श्लोक जो बहुत प्रसिद्ध है, सब जानते हैं जो प्रचारक है, उस श्लोक को जो अच्छी तरह समझ गया, पूरा समझ गया, वो श्लोक है अध्यायों का आठवां श्लोक। कौन सा क्या है? गतिर्भरता, हम तो सब जानते हैं। भगवान कहते हैं गति, गति का मतलब लक्ष्य, खेजन मही लक्ष्य अमही भरता, भरण पोषण करने वाला मैं ही हूं। कौन है? कृष्ण। भगवान कहते सब। अब भरण पोषण कैसे करते? बहुत सरल है, विशेषकर आप सब भक्त जो लोग प्रचारक हो, क्योंकि प्रचारक जब आप बाहर जाते हो प्रचार करने के, तो बड़े बड़े नास्तिक मायावादी भी मिलते हैं जो कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, राइट, भगवान का कोई आकार नहीं, मेरा आकार है, लेकिन जो भगवान है उनका कोई आकार, ऐसा कोई हो सकता? लेकिन एक अज्ञानी लोग ऐसा भ्रम लोगों में फैला हुए, ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? गीता देनी चाहिए। ऐ श्लोक आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, ऐसी श्लोक पर उनको क्या करना चाहिए, आप परास्त कर सकते हैं। उसे बोलो कि भगवान क्या करे, गतिर भरता, कि मैं ही लक्ष्य हूं, भरता भी मैं हूं। भरता कहते हैं बैगन का भरता नहीं तो भरता बल होता है भरण पोषण करने वाला, इसलिए देहात में पति क्या कहा जाता है? भरता कहा जाता है, कि मार भरता है कहते नहीं, भरण पोषण करने वाला, ये देसी ठेठ भाषा, लेकिन ये संस्कृत भाषा है ना। तो गाँव वाले क्या होते हैं, बात संस्कृत भाषा होती है, उसको अपनी भाषा में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो भरतार जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, भरण पोषण करने वाला, तो गाँव कहते भरतार कह देते हमारे पति, ऐसा होता। तो भगवान का भरण पोषण करते हैं, कैसे करते हैं? देखिए जीवन जीने के लिए सबसे कीमती वस्तु जानते क्या है? वायु। क्या है? हवा। कौन देता है? तब आप नास्तिकवादी से कह सकते हैं कि अगर तुम भगवान को नहीं मानते तो तुम्हारा नाक मुंह में बंद कर देता हूं क्योंकि हमारे भगवान हवा दे रहे हैं, अगर तुम हमारे भगवान तुम भगवान को नहीं स्वीकार करते तो उनकी दी हुई हवा कर लेने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आज तक किसी दुनिया के वैज्ञानिक ने यह दाव नहीं किया, दाव नहीं ठोका कि मैं हवा बना रहा हूं और सप्लाई कर रहा हूं। तो क्या कर सकता है? तो हवा भी देने वाले कौन है? भगवान है। और ये हवा ही हमारा क्या है? जीवन है। जीवन किसे कहते हैं? बहुत आसान समझ कि वायु का अंदर जाना और बाहर निकलना, सांस लेना जीवन है। हवा यही हवा जो बह रही है आप अंदर जाती है, हमारे नाक किसी ने बनाए? सांस लेने के लिए और सूंघने के लिए। भगवान जब शरीर बना है तो एक एक पार्ट बना है, उसकी उपयोगिता भी है, क्योंकि सबसे कीमती वस्तु क्या होती है? वायु। तो वायु कैसे जाए? कान से तो जाएगी नहीं, उसके नाक बनाए। तो हवा का आना हवा का जाना ही क्या है? जीवन है। जब ही आना जाना बंद हो जाता है तो राम नाम सत्य। इतनी साधारण सी बात हमारे समझ में, इतनी बड़ी फिलॉसफी समझा मुझे। जीवन क्या है? हवा का आना जाना ही क्या है? जीवन है। इस जीवन देने वाले कौन है? ठाकुर जी है कि हवा बनाने वाले वही है? सोचने वाली बात, कितना आसान सुनना, आप समझा सकते हैं। तो अगर कोई कहता है हम भगवान नहीं मानते कि भाई तुम्हारा नाक मुंह में बंद कर दूंगा कि भगवान हमारी हवा ले, या तो जप कर गीता पर नहीं तो नाक बंद कर, तो कैसा भी भगवान को नहीं मानता? अरे भगवान दिया हुआ हवा तो ले रहा है, हमारे ना नहीं। यह सच्चाई है। ये वायु कितनी महंगी है जानते हैं हम? अगर आप खुद सोचिए कि भगवान जो वायु हम ले रहे हैं, अगर इसका बिल मांगे 24 घंटे जब आप सांस ले रहे हैं तो कोई दे पाएगा? कोई दे पाएगा? लेकिन यही आदमी पे करता है, जब भर्ती हो जाता है हॉस्पिटल में, है ना, आईसीयू में चला जाता है, सपोर्टिंग लाइफ सिस्टम में चला जाता है ना, तब एक एक पल जीने के लिए एक एक सांस के लिए बिल देना पड़ता है। क्या बोलो, भर्ती हो जाता है आईसीयू चला जाता है, तब इसी सांस का तरसता है, कंप्यूटर लगा दिया था, बिलिंग सिस्टम लगा दिया था कि जितने समय तक जिएगा इसका बिल, जितना सांस लिया इसका बिल देना पड़ेगा। जब इंसान आईसीयू में चला जाता है एक एक पल जीने के लिए, एक एक सांस का जब बिल देना पड़ता है, तब पता चलता है कि सांस कितनी महंगी है। सोचे तो ऐसे परम भगवान जिन्होंने हमारे पर इतनी बड़ी कृपा की है कि हमको हवा फ्री में दे रहे हैं, हम उनका नाम तक नहीं ले रहे, तो हम कितने नमक खरामी हैं। ए नमक खराम सब, कि जिन तन दियो ताई सुरायो, ऐसो नमक हराम। जिन्होंने शरीर दिया है, शरीर के साथ नाक दिया है सांस लेने के लिए, और उन्हें को हम भुला दिया, शरीर भी दिया है और शरीर को चलाने के लिए जो जरूरी चीजें चाहिए वो कौन दिया है? भगवान दिया है। तभी तो भरतार कराते हैं, भरतार मतलब ये होता है कि पालन पोषण करने वाला मैं ही हूं, हवा दे रहा हूं, पानी दे रहा हूं पीने के। ये पानी कौन दे रहा है? कौन दे रहा है बताइए? कौन दे रहा है? भगवान देते हैं। ये कोई वैज्ञानिक का सरकार पानी नहीं देती। अगर सरकार के हाथ में होता तो किसान आत्महत्या नहीं करते, जंतर मंतर में मई जून को लाठी चार्ज मटका फोर लाइन नहीं निकलती, एक टैंकर आता है हजार लोग टूट पड़ते हैं पानी के लिए, फिर मारा मारी होती, मर्डर हो जाता है, राइट? किसके लिए? पानी के लिए। जब तुम वैज्ञानिकों को पानी का फॉर्मूला मालूम है तब मानसून क्यों देखते हो, बादलों की ओर क्यों देखते हो, ऊपर क्यों देखते हो? तब बनाओ पानी, पिलाओ पानी, लेकिन तुम ऐसा कर नहीं सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस समय वैज्ञानिकों ने पानी के फार्मूला का पता लगाया, पानी से पहले मौजूद था, बड़े बड़े झील झरने समुद्र नदियां किसने बनाया? तो ही विज्ञान देव गॉड, तब बोलेंगे भगवान ये कृष्ण ही क्या है पानी के लिए। गीता भगवान ने सिद्ध कर दिया, भगवान ने गीता में बता भी दिया कि अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, और वर्षा होती है हरिनाम संकीर्तन से, यज्ञ से, क्योंकि अन्न तभी उत्पन्न होगा जब जल, जल होती वर्षा से, और वर्षा का सिस्टम किसका है, भगवान का। कि भगवान ने क्या बनाया है, बड़े बड़े समुद्र बनाए, और सूर्य देवता ये जो अपने प्रकाश जो है प्रकाशित करते हैं, तो वो जो भाव बादल बनता है, ना कैसे बनता है, ये भगवान का नेचुरल सिस्टम है कि समुद्र और सूर्य मिलकर के बादल बनाते हैं, और बादल क्या करता है, वर्ष बारिश करता है, और उसी बारिश क्या होता है, अन्न उत्पन्न होता है। तो जल भी कौन देते हैं, भगवान देते हैं। और फिर अन्न का नंबर तीसरा आता है, अन्न की तभी उपजेगा जब वर्षा होगी, जल होगा, तो अन्न भी देने वाले कौन है, कृष्ण। इसलिए भगवान कहते हैं गतिर्भरता प्रभु साक्षी, मैं लक्ष्य हूं, मैं भरण पोषण करने वाला हूं, भरता भी मैं बताए। जब भगवान कह रहे आज इंसान को इसका ज्ञान ही नहीं है, वो सोचता मैं ही करता धरता, तुम खा करता धरता, तू बुढ़ा नहीं होना चाहता, क्या बुढ़ा हो रहा था, कोई भी इंसान बुढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन बुढ़ा होता नहीं होता है, कोई आदमी बीमार नहीं होना चाहता, सब बीमार होता है, कोई चाहता कि मुझे छींक आए, सर्दी जुकाम हो, कोई चाहता है, लेकिन आना ही पड़ता है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। हम नहीं चाहते कि बीमारी आए, हम नहीं चाहते कि हम बूढ़े हों, हम नहीं चाहते कि मरे, लेकिन इस सारे आता है हमारे शरीर पर, अब कोई कंट्रोल नहीं लगा, राइट है मेरा कंट्रोल कुछ नहीं। जब तुम अपने शरीर के अंदर क्या होने वाला है पता नहीं चलता, तो संसार में क्या होने वाला क्या पता लगाओगे, सोचने वाली बात है। पता रहता कि आपको बुखार आने वाला है, डेंगू काटने वाला है, पता होता है कि चिकनगुनिया पकड़ने वाली पकड़ लेती है, जब पकड़ लेती है तब पता चल डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट। हमको जब खुद ही पता नहीं है, जिस शरीर के अंदर हम रहते हैं शरीर में क्या अटैक होने वाला है, खुद नहीं पता चलता तो क्या हो, तुम्हारे हाथ में क्या, कुछ नहीं, इंसान के हाथ में वास्तव में कुछ नहीं है, भाई है कुछ अपने हाथ में, सब किसके हाथ में है, ठाकुर जी के। इसलिए इस अज्ञानता को दूर करके हमें प्रभु का नाम लेना चाहिए, अहंकार में नहीं रहना चाहिए। इसलिए भगवान ही हमारे जीवन के क्या है, आधार है, कृष्ण द लाइफ एंड सोल, हमारी आत्मा और जीवन कौन है, एकमात्र भगवान। इसीलिए हमारे प्रश्न करते हैं कि मानुष जन्म पाइया राधा कृष्ण नए भजिया जानिया सुनिया बिस्खान। अगर मनुष्य होकर के हमने राधा कृष्ण की भक्ति नहीं की, हर नाम को नहीं अपनाया, तो हमारा जीवन क्या है, बेकार है, हम जहर पी रहे, अपने पांव कुल्हाड़ियां खुद मार रहे। इसलिए आपसे संबोध है कि आप लोग जो भागवत क्लास अटेंड करते हैं, माला जप कर रहे हैं, जो कम कर रहे हैं वो ज्यादा करें, क्योंकि भक्ति की कोई सीमा नहीं है, अशुद्ध भक्त की अवस्था पहुंचना है। कि भगवान कहता है कि हजारों हजारों भक्तों में से अर्जुन कोई एक मेरी ओर आता है, और उन आयु में से बिरला ही कोई एक ऐसा होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है। सब महात्मा सो दुर्लभ, ऐसे महात्मा बड़े दुर्लभ। देखिए कितने लोगों में से एक प्रभुपाद जी आए, राइट। सब महात्मा सुदुर्लभ है, प्रभुपाद जैसे महात्मा क्या है, दुर्लभ है, लेकिन आते हैं। जैसे प्रभुपाद जी आए, हम लोग भाग बड़े भागशाली हैं कि ऐसे महात्मा के क्षण में आ गए। हम कोलकाता गए थे, वो स्थान देखा जहां प्रभुपाद जी ने जन्म लिया था। कटहल जाते ना, कटहल, कटहल के पेड़ के नीचे प्रभुपाद जी के जन्म हुआ था, पता है ना, नहीं मालूम। जो कटहल होता ना, कटहल जैसे चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहा होता है, नींद नीचे। और प्रभुपाद जी का धर्म कहा था कटहल के पेड़ के नीचे, वो वृक्ष हम देख करके, जगह देख करके हैरान रह गए कि जिस जगह प्रभुपाद जी जन्म लिया है ना, आप जब जगह देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि क्या ऐसे छोटे स्थान पर जन्म लेकर के प्रभुपाद जी इतना दिव्य स्थान बना दिया। सोचने वाली बात है। संयोग से उसी दिन उनके जब छोटे वाले बेटे प्रभुपाद जी के वृंदावन डे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, वो मंदिर आए थे। सोचने वाली बात है, उनके बेटे से मुझे और आनंद आ गया वृंदावन डे। कितना बड़ा प्रभुपाद ने त्याग किया कि अपने बच्चों बीवी सब को छोड़ करके, त्याग करके अकेले निकले। आज कितना बड़ा परिवार है, हम सब उन्हीं के तनाती पोते हैं। सोचने वाली बात, करोड़ों करोड़ लोग जुड़े, पूरा परिवार जुड़ गया। किसकी कृपा से? कृष्ण की कृपा से, प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास कि गुरु की कृपा देखिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने आदेश दिया कि आप जाकर के पांच सात देश में क्या करिए, प्रचार कीजिए। इसलिए गुरुमुख पद मांग के प्रभुपाद जी स्वीकार किया। रिजल्ट आपके सामने। आज हम लोग क्यों बैठे हैं? अगर प्रभुपाद जी नहीं गए होते आज पंजाबी बाग हम लोग बैठे होते नहीं होते। प्रभुपाद जी के पास संभव है तभी आपको कपटा जाए मार पर। तो प्रभुपाद जी जन्मस्थली जरूर देखिए। प्रभुपाद जी का जन्म उनके ननिहाल हुआ था क्योंकि शायद कुछ ऐसा नियम है कि जब पहला संतान होता है मायके में होता है, है ना, तो अपने ननिहाल में जन्म हुआ था प्रभुपाद जी। और वो घर अभी भी उसको इस काम ने ले लिया है। वो घर छोटे छोटे चार कमरे हैं, चार पांच बहुत छोटे छोटे, बिल्कुल लो क्लास की बस्ती है। जैसे आपने मंगोलपुर तक बहुत अच्छी बन गई, बहुत अच्छी है ना, बहुत लो क्लास की जब जहाँ प्रभुपाद जी ननिहाल होते मैं देख रहा। वो कटहल का पेड़ अभी भी वहाँ पे इस कान बोर्ड लगा रखा है कि दिस इज जयपुर की फिर प्रभुपाद सेकेंड बर्थ डेस्ट। सच में और वहीं पे बहुत सुंदर राधा कृष्ण का एक मंदिर है। जब वो पैदा फिर प्रभुपाद तो उनकी माँ ने पहले वहीं दर्शन कराया ठाकुर जी। सोचना वो मंदिर भी अभी भी है। कहने का मतलब कि अगर हम ये समझ जाए कि हमारे जीवन के लक्ष्य कृष्ण हैं तो आप किसी भी आश्रम रहेंगे कृष्ण के अनुसार जीवन क्या करेंगे, जिएंगे। यही प्रभुपाद चाहते हैं कि आप गृहस्थ आश्रम रहिए लेकिन जीवन कैसे अपनाइए, शास्त्रों के आधार पर अपना जीवन जी। जब लक्ष्य हमारे कृष्ण होंगे, इंद्र तृप्ति लक्ष्य नहीं होगा तब हम आनंद रहेंगे। अगर इंद्र तृप्ति लक्ष्य रहेगा तो आप आनंद नहीं लेंगे क्योंकि पैसे से और टेक्नोलॉजी से आध्यात्मिक शांति नहीं मिलती। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी में कितने आगे, उनका डॉलर कितना हैवी है लेकिन फिर भी वो लोग पीस ऑफ प्लेजर के लिए तरस रहे थे, आनंद और शांति के लिए तलाश में भटक रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जब जाकर के हरे नाम दिया, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम, तो वही लोग सब छोड़ करके करताल लेकर कीर्तन करने लगे। करने में क्योंकि इसमें आनंद है, इसलिए हमारे जो भक्त हैं किसी भी आश्रम में आनंद में है कि नहीं। आदमी गधे की तरह मेहनत करता है किसके लिए, रोटी कपड़ा और वो तो स्वतः ही मिलेगा,
स्वतः ही मिलेगा। जैसे आप ज्वाइन कर रहे थे, आप किसी चीज कोई कमी है भाई जी, जानते हैं सच्चाई क्या है कि जिस मार्केट से, जिस दुकान से आपके यहाँ मंदिर में चावल दाल इस सब्जी सब फ्रूट आता है, वही फाइव स्टार में जाता है, हर जगह वही जाता है। अंतर क्या होता है कि वही चीज जब मंदिर में आता है तो हम उसको भगवान के लिए भोग लगा करके फिर हम खाते हैं। जो गुणनिधि होता है वो भगवान को भोग लगाए बिना खाता है, पाप खाता है। जो पाप खाएगा वो कभी संतुष्ट होगा नहीं, इससे प्रॉब्लम है। ये तो भगवान गीता में सुनाते हैं, जो भोग लगाए बिना खाता है मुझे क्या खाता है, पाप खाता है। तो पाप खाने वाला पापी आदमी कभी आनंद रहे, चीज वही होती है, वही चावल दाल रोटी सब्जी, वही भिंडी सब्जी, वही हम भी खाते हैं, वही केला यहाँ भी है, लेकिन ठाकुर जी भूल रहा है। गृहस्थ के घर में, मेहंदी घर में, अगर गृहस्थ के घर में जाएंगे तो आपको हर आइटम भोग लगा हुआ मिलेगा खाने, लेकिन गृहमेदी क्या जाएंगे और फ्रिज में ठोस ठोस के भरा रहेगा फ्रूट, निकालेगा नहीं। भगवान मंदिर बना के रखेगा घर में, लेकिन कभी भोग नहीं लगाएगा। अब फ्रिज में फल रखेगा, कोई रिश्तेदार आ जाएगा तब फल निकलेगा, अब काट के तुरंत उसको खिलाएगा, भगवान से मुंह देखते रहेंगे बैठे बैठे। यही अंतर होता है गृहमेदी और गृहस्थ, ये सबसे सरल अंतर है। भक्त लोग क्या घर में आप जाएंगे तो ऑल्टर में भी कोई एक तो केला रखते रखना चाहिए, फल फ्रूट रखना चाहिए। गृहमेदी क्या करेगा, फिर में रखे रखे दबा करके भगवान के पास रखेगा ना, भोग नहीं लगाएगा। यही अंतर, हमें गृहस्थ आश्रम में रख करके भक्ति करके भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। वही तो कष्ट को न्याय करेगी, सब ठीक तरह जरूर कुछ नियम में कोई त्रुटि है। तो गृहमेदी और गृहस्थ को अच्छी तरह आप लोग समझ लीजिए, हमें गृहस्थ होना चाहिए, गृहमेदी नहीं होना चाहिए। माई जीवन के लक्ष्य को होना चाहिए कृष्ण होना चाहिए। वो कहते हैं गतिर्भक्ता प्रभु साक्षी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।